नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। और खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।